पेज नंबर 264, चैप्टर नंबर 28।
नावल अमर बेल, तसनीफ उमेरा अहमद, सौती पेशकश लिटरेरिया एजुकेशन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, www.literaria.edu.pk।
तो अलीजा बीबी वापस आ चुकी हैं। उमर ने रात के खाने के लिए डाइनिंग रूम में आते ही अलीजा को देखकर खुशगवार अंदाज में कहा था। अलीजा सपहर को वापस पहुंच गई थी और इस वक्त घर में उमर नहीं था। वो रात को ही वापस आया था और वापस आने के बाद उन दोनों की मुलाकात डाइनिंग रूम में ही हुई थी। तो क्या कुछ सीखा और देखा आपने? वह कुछ सी खींचते हुए बैठ रहा था। बहुत कुछ, अलीजा ने मुस्कुरा कर कहा। इस बहुत कुछ के बारे में हमें बताना पसंद करेंगी? उस वक्त से ये मेरे कान खा रही है, अब तुम्हारे खाएगी, नानो ने मुस्कुराते हुए उमर को जैसे खबरदार किया था। तो अब क्या ख्याल है इन एनजीओस के बारे में? उमर ने ग्लास में पानी डालते हुए पूछा। आपने एनजीओस के बारे में जो कुछ कहा था मैं उससे इत्तेफाक नहीं करती। उमर ने पानी का घूंट लेते हुए गहरी नजरों से उसे देखा। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। वेरी गुड, इसका मतलब है आपने वाकई अपनी सेंस ऑफ जजमेंट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वैसे किस बात से एग्री नहीं करती तुम? उसने पूछा। आपकी सब बातों से, उसने अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए कहा। सब बातों से? तुम्हारा मतलब है मैंने तुमसे झूठ बोला है? अलीजा एकदम गड़बड़ा गई। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर आप क्या फरमा रही हैं? अलीजा कुछ देर खामोशी से जैसे अपने लफ्ज़ों को तरतीब देती रही, फिर उसने कहा, आपने एनजीओस के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी वो ठीक नहीं थी। एनजीओस ने उस इलाके में बहुत काम किया है, तुमने उनके स्कूल वगैरह देखे होंगे इसलिए। अलीजा ने उमर की बात काट दी। नहीं, बात सिर्फ स्कूल्स की नहीं है, मैंने सिर्फ स्कूल्स ही नहीं देखे, वहाँ और भी बहुत कुछ देखा है। मैंने लोगों से बातचीत की है। एक शख्स झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, मगर हर शख्स तो नहीं। वहाँ हर शख्स यही कह रहा है कि इन एनजीओस की वजह से इस इलाके में बहुत तरक्की हुई है। इस चीज़ पर भी पूरा यकीन नहीं करना चाहिए जो आंखों देखा हो ना कानों सुना हो। उमर ने इत्मीनान से उसकी बात रद्द की। और उनके बारे में क्या कहते हैं जो आंखों देखा और कानों सुना हो? अलीजा ने कुछ उखड़े अंद लहजे में कहा। फिर उस पर गौर करना चाहिए कि जो कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा है क्या वो वाकई ठीक है? उमर संजीदा हो गया था। मैंने यही किया है, उमर ने सर उठाकर उसे देखा। चंद लम्हे उसे देखने के बाद वो बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। फिर इस पर गौर करना चाहिए कि जो कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा है क्या वो वाकई ठीक है? उमर संजीदा हो गया था। मैंने यही किया है, उमर ने सर उठाकर उसे देखा। चंद लम्हे उसे देखने के बाद वो बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराया। और तुम्हारे इस गौर होश ने तुम्हें ये बताया है कि एनजीओस वो आसमानी मौजज़ा है जो इस मुल्क में बहुत पहले हो जाना चाहिए था? अलीजा को इसके लहजे में छुपा तमस्खर बुरा लगा था। मैंने ये नहीं कहा कि एनजीओस कोई आसमानी मोजज़ा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस इलाके के लोग इन एनजीओस पर एतबार कर कि इस इलाके के लोग इन एनजीओस पर एतबार करते हैं क्योंकि वह महसूस करते हैं कि ये लोग उनके इलाके में तब्दीलियाँ ला रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। किन लोगों की बात कर रही हो तुम? उसका लहजा एकदम सर्द हो गया था। उन लोगों की जिनके पास तालीम और शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं है। सहूलियात और ज़हनीत के एतबार से इस मुल्क की सबसे पसमानदा क्लास जो देहात में बसती है, जिसकी सोच गुलामाना थी, है और रहेगी, जिन पर पहले नवाब और महाराजा हुकूमत करते थे, फिर जागीरदार और रईस, और अब एनजीओस। और तुम्हारा ख्याल है कि सब कुछ बदल गया है? कल तक गालियाँ और धक्कों को मेहरबानी समझ कर मुस्कुराने वाले लोग इतने बाशऊर हो गए कि उनमें अच्छे और बुरे की पहचान आ गई है। इन लोगों में शऊर आ रहा है, वहाँ तलीम का रेशो भी ज़्यादा हो रहा है, अलीजा ने धीमे लहजे में कहा। तलीम और शऊर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता अलीजा बीबी, अगर ऐसा होता तो आज तक किसी तलीम याफ्ता शख्स ने कोई जुर्म ना किया होता। उसका लहजा अब भी खुरदरा था। मगर वहाँ के लोग वाकई बदल रहे हैं, अगर एनजीओज ये दावा करती हैं कि उन्होंने वहाँ इस्लाहात की हैं तो वो गलत नहीं कहती। वहाँ लोग वाकई एक बदले हुए माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ के लोग एनजीओज के बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं, अलीज़ा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। उमर इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसा। वहाँ के लोग तो गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के बारे में भी बहुत अच्छी राय रखते हैं, फिर क्या तुम ये सोचना शुरू कर दोगी कि ये भी ठीक होता है? अलीज़ा कुछ देर बात नहीं कर सकी। बेहतर होता तुम एनजीओ से कहकर वहाँ के थानों का रिकॉर्ड भी चेक कर लेती। गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का और इर्द गिर्द का इलाका खानदानी दुश्मनों के लिए भी हासा मशहूर है और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलती है और ये सिलसिला गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का और इर्द गिर्द का इलाका खानदानी दुश्मनियों के लिए भी हासा मशहूर है और ये नस्ल दर नस्ल चलती आती हैं चली आती हैं और ये नस्ल दर नस्ल चली आई और ये नस्ल दर नस्ल चली आती हैं तब तक जब तक मुहालिफ का पूरा खानदान ना खत्म हो जाए। और ये लोग एक दो कत्ल नहीं करते, ये छः छः सात सात लोगों को इकट्ठा मरवा देते हैं और कोई महीना ऐसा नहीं होता जब इस इलाके में ऐसा कोई वाकया ना हो। अब बकौल आपके, अगर एनजीओज ने वाकई इन लोगों की सोच में तब्दीली कर दी है तो सबसे पहले तो इन लोगों के रवैयों में तब्दीली होनी चाहिए। वह सलाद खा रहा था। अलीज़ा इसकी बातों पर हिफत महसूस कर रही थी। जो लोग एक गाय भैंस चुराए जाने पर मुहालिफ के घर की औरत उठा लेते हैं, रात को खेतों की रखवाली करने वाले कुत्ते के मारे जाने पर मुहालिफ की तैयार फसलों को आग लगा देते हैं, खेत का पानी रोके जाने पर किसी को भी कत्ल करना जायज समझते हैं, ऐसे लोगों की एनजीओ के बारे में अच्छी राय किस हद तक काबिल एतबार हो सकती है या इसे कितनी अहमियत देनी चाहिए? ये काफी काबिल गौर है। हर तब्दीली लाने में वक्त लगता है, एनजीओ को भी वक्त लगेगा, मगर ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अलीज़ा की राय अभी भी तब्दील नहीं हुई थी और ऐसा कभी नहीं होगा। कम अज़ कम एनजीओज़ ये काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो ये काम करने नहीं आई हैं। उमर का लहजा बहुत मुस्तहकम था। हो सकता है एनजीओज़ में कुछ लोग खराब हों, ये कह लें कि चंद एनजीओज़ खराब हों, मगर सब एनजीओज़ तो इस तरह की नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, एनजीओज़ भी नहीं हो सकती। मुझे हैरत होती है कि हम उन्हें परफेक्ट देखना क्यों चाहते हैं। वो इस बार कुछ जिच होकर बोली, इसलिए क्योंकि वो तब्दीली लाने के दावे कर रही हैं। उमर के इत्मीनान बरकरार था। आप एनजीओ के इतने खिलाफ क्यों हैं? इस बार अलीज़ा ने कुछ नाराज़ी से उससे पूछा। तुमसे किसने कहा कि मैं एनजीओ के खिलाफ हूँ? उमर ने इतनी ही बेसाख्तगी और सुकून से कहा। अलीज़ा हैरान हुई। क्या मतलब, ये सब कुछ जो आप कह रही हैं ये क्या है? हकायक, वो आप भी उसी तरह मुस्कुरा रहा था। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर यही हकायक हैं तो ये सब कुछ जानने के बाद आप एनजीओ के खिलाफ नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलीज़ा मुंह खोले बेयकीनी से उसे देखती रही। मेज़ के दूसरी तरफ बैठे हुए शख्स को समझना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। ये क्या बात हुई, इसका मतलब है आप एनजीओ को पसंद करते हैं? वो उलझ गई थी। मैंने ये भी नहीं कहा। ना आप एनजीओ को पसंद करते हैं ना आप उन्हें नापसंद करते हैं, मगर आप उनके बारे में अच्छी राय भी नहीं रखते, ये क्या तजाद है? उमर ने उसके लहजे में झलकने वाली हफकी को नज़रअंदाज करते हुए अपनी प्लेट में एक कबाब निकाल लिया। है तो उसने कमाले बेनियाजी से कबाब खाते हुए कहा। अलीज़ा एक बार फिर उसे देखने लगी। आप पुलिस सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, फ़र्ज करें आपके इलाके में कोई एनजीओ काम कर रही होगी तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। और अगर इस एनजीओ ने इस इलाके में पुलिस की तरफ से होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिए तो आप क्या करेंगे? मैं उस इलाके से उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा, उसने बेतासुर चेहरे और आवाज़ के साथ कहा और पानी का गिलास उठा लिया। अलीज़ा बेयकीनी से उसका चेहरा देखती रही, इसके बावजूद कि वो एक सही काम कर रहे होंगे। अलीज़ा, इस कैक्टस को देखो। उमर ने पानी का गिलास रखते ही डाइनिंग टेबल से कुछ फासले पर एक कोने में पड़े हुए कैक्टस की तरफ इशारा किया। फ़र्ज़ करो मैं बाजार से एक पौधा खरीदने जाता हूँ और वहाँ सिर्फ यही एक पौधा है और कोई पौधा नहीं है। मैं ना इसके नाम को जानता हूँ ना मुझे ये पता है कि ये फूलदार है या नहीं या कितना अरसा चल सकता है, मगर मुझे एक पौधे की ज़रूरत है तो मैं इसे खरीद लाऊंगा, फिर इसे यहाँ डाइनिंग रूम में रख दूंगा, ये जानने के बावजूद कि इस पर कांटे हैं। ये यहाँ पर इस वक्त तक पड़ा रहेगा जब तक इसके कांटे मेरे लिए किसी तकलीफ का बायस नहीं बनते। जिस दिन इसके कांटों से किसी को जख्म लगा या किसी के कपड़े फटे, उस दिन इस कैक्टस को यहाँ से हटा दिया जाएगा। मैं हूँ या तुम, हर एक यही करेगा। कोई भी दोबारा जख्म लगने या कपड़े फटने का इंतजार नहीं करेगा, वो उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था। मगर मैं कभी कैक्टस नहीं हटाऊंगी, मैं उसके कांटे खत्म कर दूंगी। वो बेहतियार उसकी बात पर मुस्कुराया। बट आई ऑलवेज प्ले सेफ, मैं कांटों के दोबारा उगने का रिस्क नहीं ले सकता, सिर्फ इसलिए कि आपके अपने हाथ जख्मी होंगे, कपड़े फटेंगे, है ना। आप जो एनजीओ के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि शायद इस क्लास को एनजीओ से खतरा है जिससे आप ताल्लुक रखते हैं। उमर इसकी बात पर चौंका। तुम्हारा इशारा किस क्लास की तरफ है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ या एलीट क्लास की तरफ? दोनों की तरफ। उसकी आवाज मध्यम थी। उमर मुस्कुराया। तुम भी इस क्लास का हिस्सा हो, ब्यूरोक्रेट ना सही एलीट तो हो। हाँ हिस्सा हूँ, मगर अच्छी चीज को अच्छा कहूंगी, बुरा नहीं कहूंगी, चाहे वो मेरे लिए नुकसानदायक ही क्यों ना हो। तुम्हारा ख्याल है कि एनजीओ ब्यूरोक्रेसी या एलीट क्लास को कोई नुकसान पहुंचा रही हैं या आइंदा कभी पहुंचा सकती हैं? हाँ ऐसा ही है, ये सबके के मफादात के लिए काम कर रही हैं जिन्हें हमारी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स का सामना है। आप अगर ऐसा सोच रही हैं तो एक बार फिर गलत सोच रही हैं। कोई एनजीओ ब्यूरोक्रेसी को नुकसान पहुंचा सकती है ना एलीट क्लास को, क्योंकि हर एनजीओ एलीट क्लास ही बनाती है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की बेगमात, सियासतदानों की बीवियां, सनतकारों की बीवियां। क्या तुमने कभी ऐसी एनजीओ देखी है जिसे लोअर मिडिल क्लास का कोई मर्द या औरत चला रहा हो, या किसी स्कूल का टीचर, किसी किसान की बीवी, कोई मजदूर उसकी बीवी? नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं देखोगी। और तुम्हारा ख्याल है कि ब्यूरोक्रेट्स की बीवियां ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ काम करेंगी, सनतकारों की बीवियां इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के मफादात के खिलाफ काम करेंगी, और सियासतदानों की बीवियां अपने शोहरों की धंधालियों के खिलाफ लोअर मिडिल क्लास को उकसाकर इनकलाब ले आएंगी। बहुत बचकाना सोच है तुम्हारी, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है अभी। वो जैसे अपनी बातों से खुद ही महसूस हो रहा था। मैं तो बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ किसी एनजीओ से, बल्कि अगर कभी मैंने शादी की तो मैं भी अपनी बीवी से कहूंगा कि वो एनजीओ बनाए, हम भी कुछ ग्रांट्स वगैरह लेकर कहीं प्लाजे वगैरह बनाएंगे, फ्री में बाहर सेमिनार में जाकर पेपर्स पढ़ेंगे, शोहरत मिलेगी, दौलत होगी, असर रसूख बढ़ेगा, सैर तफरी के मौके मिलते रहेंगे, फिर कल को बच्चों की बैरून मुल्क तलीम का कोई मसला नहीं होगा, वो भी ऐश करेंगे। उमर की संजीदगी एकदम खत्म हो गई थी। अब वो जैसे अलीजा को चिढ़ा रहा था। और तुम अलीजा, तुम भी ठीक हो जाओगी अगर तुम्हारी शादी भी किसी ब्यूरोक्रेट से हुई, फिर तुम भी ऐसी ही किसी फ्रॉड एनजीओ की रूह रवा होंगी, हर तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होगी, सड़क पर जाकर जुलूस भी निकाला करोगी, मुख्तलिफ काज के लिए वॉक्स अरेंज करवाया करोगी, फिर उन्हें मुल्क के चक्कर पर चक्कर लगेंगे, और फिर अगर कहीं 10 साल बाद यहीं इसी टेबल पर मेरी तुमसे और तुम्हारे शोहर से मुलाकात होगी तो तुम स्टाइलिश सी साड़ी पहने, डायमंड से लदी हुई, मेरी तरह मिनरल वाटर की बोतल से पानी पीते हुए मुझे बता रही होगी कि तुम्हारी एनजीओ साफ पानी की सप्लाई के लिए किस कदर मेहनत कर रही है, और तुम्हारा शोहर तुम्हारी बातों पर मुस्कुरा कर मुझे बता रहा होगा कि उसे तुम जैसी टैलेंटेड बीवी मिली है। क्यों ग्रैनी? नानो उमर की बात पर मुस्कुराई थी। अलीजा का चेहरा यकदम सुरख हुआ, फिर इसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वो यकदम अपनी कुर्सी से खड़ी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा, उसने बुलंद आवाज में कहा, और फिर एक छुपाके के साथ डाइनिंग रूम से निकल गई। उमर और नानो के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। अलीजा नाराज हो गई है, मैं देखता हूँ, उन्होंने कुछ मुआजरत हवाना अंदाज में नानों से कहा और डाइनिंग टेबल से उठ गया। उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए वो कुछ शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी छोटी सी बात पर इस तरह रोना शुरू कर देगी। दरवाजे पर एक बार दस्तक देने के बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए सोफे पर बैठी हुई थी। दरवाजा खुलने पर उसने हाथ हटाकर देखा था, और उमर को देखते ही वो आग बगोला हो गई। अब आप यहाँ क्यों आए हैं? गालों पर बहते हुए आंसुओं और सुर्ख चेहरे के साथ उसने उमर से पूछा। कम ऑन अलीजा, मैं मजाक कर रहा था, उमर ने दरवाजा बंद करते हुए जैसे से बहलाते हुए कहा। आपके लिए हर चीज मजाक क्यों है? उमर ने इसे पहली बार इस मूड में देखा था। और मेरी हर बात ही मजाक क्यों है? आप मुझे क्या समझते हैं यार? इतना गुस्सा, उमर ने मुस्कुराते हुए उसे ठंडा करने की कोशिश की। आपको मेरा मजाक उड़ाने का क्या हक पहुंचता है? वो उसकी कोशिश से मुतासिर नहीं हुई। आपको अपने अलावा दूसरों की हर बात मजाक लगती है, क्या आप ये पसंद करेंगे कि मैं भी मजाक में आपके बारे में ऐसी बातें करूं जैसी आप करते हैं? वो तेज आवाज में रोते हुए कह रही थी। मैं एक्सक्यूज करता हूँ, मैंने जो भी कहा गलत कहा, मैं एक्सक्यूज करने ही यहाँ आया हूँ, उमर ने एकदम दोनों हाथ उठाकर उससे कहा। वो अब भी बोलती रही। आप मुझसे कहते हैं मैं अपनी सेंस ऑफ जजमेंट इस्तेमाल करके अपनी राय बताऊं, اور جب میں ایسا کرتی ہوں تو آپ مجھ پر ہنستے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کے نزدیک دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا صحیح رائے رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ علیزہ، میں نے ایسا نہیں کہا، میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، میں نے بغیر سوچے سمجھے ہی ایک بات کہی۔ عمر بالکل مدافعانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، مگر علیزہ اس کی بات سنے بغیر بول رہی تھی۔ میں نے این جی اوز کے بارے میں جو کچھ کہا ٹھیک کہا، میں نے جو دیکھا جو محسوس کیا وہی بتایا۔ میں نے آپ کی رائے کا مذاق نہیں اڑایا، میں نے آپ کی ہر بات سنی، مگر آپ میری باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، ایڈیٹ؟ عمر کے چہرے سے اب مسکراہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ آپ کو لگتا ہے دنیا میں آپ کے علاوہ اور کوئی جینیس نہیں ہے؟ میں نے ایسا نہیں کہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کے پاس سینس آف ججمنٹ ہی نہیں ہے؟ تم اس وقت غصے میں ہو، تمہیں پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ عمر ایک دم پلٹ گیا، مگر علیزہ بجلی کی رفتار سے اس کے راستے میں آگے۔ نہیں، آپ میری بات سنیں، اس کے بعد جائیں۔ میری ایک چھوٹی سی بار پر اتنا مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں تھی، عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے آپ کی کسی بھی بات پر مشتعل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو ہر بات کہنے کا حق ہے، لیکن مجھے کچھ بھی کہنے کا حق نہیں ہے۔ تم بہت کچھ کہہ رہی ہو علیزہ، اور میں سن بھی رہا ہوں، اس کے باوجود کہ تمہارا رویہ بہت انسلٹنگ ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، جو کچھ آپ مجھ سے کہہ چکے ہیں اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اب بھی اسی طرح برہم تھی۔ میں اپنی بات کے لیے ایکسکیوز کر چکا ہوں۔ آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، پھر انسلٹ کرتے ہیں، اور ایسا بار بار کرتے رہتے ہیں۔ علیزہ، تم غلط کہہ رہی ہو۔ عمر حتی المکان اپنے لہجے کو نارمل رکھ رہا تھا۔ میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں، آپ نے اس دن بھی میری انسلٹ کی تھی جب انگل جہانگیر کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا۔ عمر کے چہرے کے تاثرات ایک دم تبدیل ہو گئے۔ وہ تمہاری غلطی تھی، تم میرے کمرے میں اس طرح کیوں آئی تھی؟ اس نے سرد آواز میں علیزہ سے کہا۔ نہیں، آپ کو اس بات پر غصہ نہیں آیا کہ میں آپ کے کمرے میں اس طرح کیوں آئی تھی؟ آپ کو غصہ اس بات پر آیا تھا کہ میں یہ بات جان گئی ہوں کہ آپ ڈرنک کرتے ہیں؟ تمہیں پتہ چل گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اور تم ہو کون جس کو یہ پتہ چلنے سے مجھے کوئی فکر ہوگی؟ اس کی آواز میں اب تلخی تھی۔ میں نے نانو کو نہیں، میں نے نانو کو نہیں بتایا، میں نے نانو کو نہیں بتایا کہ آپ ڈرنک کرتے ہیں، اگر میں نانو کو بتا دیتی تو۔ عمر اس کی بات پر ایک دم بھڑک اٹھا۔ تو پھر کیا ہوتا، وہ مجھے شوٹ کر دیتی یا اس گھر سے نکال دیتی؟ تم جس کو چاہو بتاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس گھر کا کون سا مرد شراب نہیں پیتا؟ وہ خود گرینڈ پا کو ڈرنک کرتے دیکھتی رہی ہیں، وہ کس منہ سے مجھ سے اس بارے میں بات کر سکتی ہیں؟ علیزہ جیسے رونا بھول گئی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ مائنڈ یور لینگویج علیزہ، تم کافی بکواس کر چکی ہو اور میں سن چکا ہوں، اب اپنا منہ بند کر لو تو بہتر ہے۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، آپ دنیا کے سب سے گندے اور بدتمیز آدمی ہیں، وہ بلند آواز میں چلائی۔ جواباً عمر نے اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ علیزہ گال پر ہاتھ رکھے بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ دنیا میں آخری چیز جو وہ کسی سے توقع کر سکتی تھی وہ عمر کا خود پر ہاتھ اٹھانا تھا۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر بے یقینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے اپنے بارے میں کسی شخص کے تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے انگلی اٹھا کر کہا، اور پھر وہ تیز قدموں کے ساتھ رکے بغیر کمرے سے نکل گیا۔
ابھی آپ ملاحظہ کر رہے تھے ناول امر بیل، لٹریریا ایجوکیشن فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ۔